जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
सब लोग बोलेंगे ना तो ठंडी हटेगी जरा सब लोग बोलिए
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राधे राधे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
पुकारो पुकारो एवरीबॉडी लाउडली
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गौरांगा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव।
यथाई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे श्याम। श्री उच्च ग्राम की श्री वर्षा धाम की जय जय श्री राधे। श्याम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोगों का श्री उच्च ग्राम में स्वागत है। उच्च ग्राम धाम की श्री ललिता देवी की शारदा देवी की अशोक महागोप की हरे कृष्णा। बरसाना धाम जो है वो कमल के आकार में है और कमल के आकार में बीच में जो जगह होती है मध्य स्थान वो बरसाना है और उसके मेन उस कमल के प्रमुख आठ पंखुड़ियां हैं, आठ दल हैं उसके। वो आठ दल में आठ सखियों के गांव हैं और राधा रानी के चार ताऊ जी थे और चार चाचा जी थे और एक उनके पिताजी, इस तरह से नौ भाई थे वो वृषभानु महाराज और उनके। तो आठों भाइयों के आठ गांव परसाना के आसपास में और बीच में राधा रानी का गांव परसाना। तो सबसे पहला गांव है ललिता देवी का ऊंचा गांव उच्च ग्राम। उसके बाद में विशाखा देवी का गांव है, वो एग्जैक्टली अपोजिट दिशा में है, उसका नाम क्या है आंजनोक अंजनपुर। फिर जहां पर हम लोग जाते हैं रमेश बाबा जी के पास और हमारा परिवार वहां पर है, उसका गांव वो उसका नाम है चिकसोली और वो चित्रा सखी का गांव है, चित्रलेखा देवी का। उसके बाद में एक देवी आती है और उसका नाम है चंपकलता देवी, उसका गांव है करहपुर जिसको आज की तारीख में करहला कहते हैं। फिर इस तरफ आगे जाएंगे तो सुदेवी का गांव आता है सुनेरा स्वर्णपुर और चिकसोली के आगे जाएंगे मान मंदिर के आगे जाएंगे तो वहां पर एक गांव आएगा उसका नाम है डभारा या डभरारो जो रंग देवी का गांव है। फिर बचती है इंदुलेखा देवी, इसका गांव है रंगपुर आज की तारीख में राकोली और लास्ट है तुंग विद्या देवी, इनका नाम गांव का नाम है कमई। ठीक है, तो आप अभी सब लोग मायापुर गए होंगे ना, तो मायापुर में कैसे है बीच में राधा और माधव जी हैं, माधव जी के दाहिनी ओर कौन है, माधव जी के दाहिनी ओर ललिता देवी है राधा रानी के बाएं ओर विशाखा देवी है, दाहिनी ओर ललिता देवी है, तो और एक ता चंपक लता उसके बाजू में आएगी, उसके बाजू में चित्रा सखी, उसके बाजू में तुंग विद्या देवी, ये सब दाहिने साइड में है। बाएं साइड में विशाखा और एक खा इंदुलेखा, और उसके बाद दो देवियां रंग देवी और सुदेवी, याद करने के लिए बहुत आसान है ना। सी अष्ट सखी वृंद की जय हो। तो ये जो ललिता देवी है, इनका जन्म राधा रानी के दो दिन पहले हुआ था, इसलिए राधा रानी की ज्येष्ठ भी है ये, और राधा रानी के गुरु भी हैं, मार्गदर्शिका भी हैं, सुरक्षा करने वाली भी हैं। किससे? कृष्णा से, कृष्ण और उनके ग्वाल बालों के आतंक से बचाने के लिए ये उनका शील्ड है, शील्ड चिलखत आवरण। उनके पिताजी का नाम है अशोक महागोप, उनका और एक नाम महाभानु भी है, और उनका विवाह शारदा देवी से हुआ था और वो यहाँ पर निवास करते थे। इस पर्वत का नाम है अशोक पर्वत, उसको अपभ्रंश में अटोर पर्वत भी कहते हैं, अटोरा अवलंबी पर्वत कहते हैं उसको, जिसपे शारदा देवी और अशोक महागोप महाभानु जी विराजमान रहते थे। उनको भाद्रपद शुक्ल षष्ठी राधा रानी के जन्मदिन के दो दिन पहले ललिता देवी का प्राप्ति हुई, और यह सब वर्णन जो है ना वो विष्णु रहस्य नाम के ग्रंथ में दिया है। विशेष करके इस गांव में बहुत सारी स्थितियां हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्थान हैं। एक यहाँ पर राइट में जाएंगे ना तो एक पर्वत है, जहाँ पर आप लोग बस उतरे ना, बस जहाँ पर उतरी आपकी, उधर एक छोटा सा पर्वत है, छोटा मतलब कद से, हाँ तो बहुत लंबा, बहुत दूर तक फैला हुआ है, लेकिन छोटा कद का है। उसका नाम है सखी गिरी, सखी यानी ललिता देवी, ललिता देवी का पर्वत है वो, और उस पर बहुत सारे स्थान हैं उस तरफ, और यहाँ पर बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन वो पर्वत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं है, उसके लिए माउंटेनियरिंग करना पड़ता है। तो सब लोगों को ये साथ देने होगा, इसलिए हमने सोचा कि हमारे ग्रुप को डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो चढ़ नहीं पाते हैं वो चढ़ पाते हैं तो अलग हो जाएंगे, जो चढ़ नहीं पाएंगे फिर वो ऐसे ही दुखी हो जाएंगे। ना दर्शन होगा ना कथा होगी, इसलिए सारे स्थलों का दर्शन कथा मैं यहीं करा दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ललिता देवी की विशेषताएं समझना बहुत जरूरी है। ललिता देवी ये कहते हैं उनका नाम ललिता देवी है, और वाम प्रखर स्वभाव है उनका, वाम यानी कैसा, हम कहते हैं ना वामपंथी, लेफ्टिस्ट, थोड़ा सा वो अग्र होते हैं, हमेशा एग्रेसिव होते हैं, प्रखर होते हैं वो, तो वैसे ही ललिता देवी का स्वभाव है। कारण क्या है उसका, क्योंकि राधा रानी बहुत भोली वाली है, बहुत ही भोली वाली है, कभी भी कृष्ण भगवान उनको क्या कहते हैं, ओवरवेलम कर देते हैं, हाँ अपने प्रेम भरे आतंक से, तो उस समय इनको अपना बनाना पड़ता है। कभी कभी कैसा होता है, किसी की पत्नी बहुत नम्र होती है और बहुत ही मन मिलाऊ होती है, लेकिन एक बार पति का देहांत हो गया ना फिर वो तो एग्रेसिव हो जाती है। मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सिंपल औरतें होती हैं जब तक पति हैं, लेकिन पति का देहांत हो गया और वो अकेली हो गई, जिम्मेदारियाँ आ गई बच्चों की और सर्वाइव होने की, तो फिर वही कोमल औरत जो है वो प्रखर तीव्र हो जाती है, जस्ट एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन। उसी प्रकार से राधा रानी का स्वभाव कोमल है, तो कभी भी कृष्ण भगवान उसको आके दुख देते हैं, कभी कष्ट देते हैं प्रेम से, तो उनके लिए वो एक सहायता के रूप में रहती है। और इनकी विशेषता ये है कि इनकी, अभी एक बात समझना जरूरी है, अष्ट सखियाँ जो है ना वो परमेष्ठी सखियाँ हैं, मतलब परमोच्च है, भगवान के सबसे निकट, सबसे श्रेष्ठ और सबसे एडवांस्ड जो पोजीशन है वो अष्ट सखियों की है। हर एक अष्ट सखियों के पास तीन गोपियाँ होती हैं, तीन मंजरियाँ होती हैं, और हर एक इस मंजरी के पास एक कोटि गोपियां सहायता करने के लिए होती हैं, एक कोटि, तो हर एक सखी के पास तीन कोटि गोपियां होती हैं जो तीन मंजरियों के नेतृत्व में उनकी सेवा करती हैं। तो ललिता देवी के तीन जो मंजरियां हैं उनका नाम है हरे कृष्णा, जो लोग वहां खड़े उनका ये भी काम है कि उनको शांत रखें। तो ललिता देवी के तीन मंजरियों का नाम है रूप मंजरी, लबंग मंजरी और अनंग मंजरी। ये कौन कौन है, रूप मंजरी नहीं, रूप गोस्वामी बनकर आए वो, लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी बनकर आए और अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन है। वो कौन है? वो बलराम जी का अवतार है। बलराम जी पांचों रस में भगवान की सेवा करते हैं, उसमें पांचवा रस जो है माधुरी रस, वो सखी बनकर राधा रानी की छोटी बहन बनकर बलराम जी माधुरी रस में सेवा करते हैं। तो ये तीन रूप मंजरी, सनातन लवंग मंजरी और अनंग मंजरी, इनके अंदर नीचे एक एक कोटि गोपियां उनकी सेवा करती हैं। हमारे लिए विशेष समझना जरूरी है क्योंकि हमारा पूरा संप्रदाय जो है ना वो रूपानुग कहा जाता है। रूप अनुग, रूप गोस्वामी का अनुगमन करने वाले, रूप गोस्वामी के अनुयायी फॉलोअर्स। तो पूरा गौड़ीय संप्रदाय जो है वो रूपानुग नाम से जानता है और ये रूप गोस्वामी हमारे प्रमुख आचार्य हैं और वो रिपोर्ट करते हैं ललिता देवी को, वो रिपोर्ट करते हैं राधा रानी को। तो हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, हमारी जो ब्रांच है ना बहुत स्ट्रांग है क्योंकि सबसे महान महान लोग हमारे ब्रांच में बैठे हुए हैं और इसका लाभ हम नहीं लेंगे तो हम दुर्भाग्य कहलाएंगे। इसकी भी कहानी आती है, संक्षेप में बताता हूँ आपको। प्रभुपाद ने इसका सुंदर तात्पर्य दिया है कि जब भी मंदिर का मार्जन हो रहा था ना, गुंडीचा मार्जन जगन्नाथपुरी में, तो समय चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कुछ बंगाली भक्तों ने पानी डाला और पानी डाला एक बार और जो पानी बह के आया तुरंत उसको पिया, तो महाप्रभु ने गुस्सा दिखाया बाहर से, तो उन्होंने और एक बार जल डाला और एक बार पानी आया और एक बार पिया, तो महाप्रभु ने और थोड़ा चेहरा दिखाया, फिर भी इनकी हिम्मत वैसे ही बरकरार थी और एक बार डाला और उसको पिया। तब चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य रूप से क्रोध दिखाया, अंदर से बहुत खुशी हो रही थी उनको, लेकिन बाहर से क्रोध दिखाया कि देखिए देखिए आपके बंगाली वैष्णव कैसे हैं, इनको कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई एटिकेट नहीं है, कोई कैसा तरीका व्यवहार का पता नहीं है, आओ स्वरूप यहाँ पर, ये तुम्हारी बंगाली गोस्वामी को अपने जिम्मे ले लो, इनको सिखाओ सब कुछ कैसे बर्ताव करना होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में लिखते हैं, उस दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो ललिता देवी के अवतार हैं, उन्होंने सारे गौड़ीय वैष्णवों का जिम्मेदारी अपने पे लिया, सारे गौड़ीय वैष्णवों को अपने शरण में लिया। इसका मतलब क्या है? हम सब लोग ललिता देवी के शरण में उनके गोद में हैं। हाँ, और उसी दिन स्वरूप दामोदर जी ने सभी गौड़ीय वैष्णवों का जिम्मेदारी लिया और उनको अपने अपने शिक्षा में रखा। ये बातें समझना बहुत जरूरी है, ये सब रहस्य की बातें हैं, ये हमें हौसला दिलाने वाली बातें हैं और विश्वास दिलाने वाली बातें हैं कि वी आर इन गुड पोजीशन, है ना, इन गुड कॉलेज, इन गुड सीट, इन गुड पोजीशन। तो ये तीन बात हो गई, तीन सखियों की। फिर अभी ललिता देवी, इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता सेवा है। तो इनकी किसी को नींद आती होगी ना, वो खड़े हो जाना, वैसे भी ऑडियंस कम है, आधा सो जाएगा तो लेक्चरर भी सो जाएगा। और ऐसे ऐसे करते रहना, उत्साह बना रहेगा आपका, हम भी करते रहेंगे आप भी करते रहना, ठीक है ना, लेकिन सोना नहीं। हाँ, तो सेवा की विशेषता इनकी यह है कि पुष्पों के विषय में जो भी सेवाएं हैं आप बता सकते हैं? पुष्पों के विषय में कौन सी सेवाएं होती हैं? पुष्पों के विषय में बताइए। माला बनाते हैं फूलों की, और क्या बनाते हैं? डेकोरेशन बनाते हैं फूलों का, और पुष्पाभिषेक होता है, भगवान के वर्षाव करते हैं पुष्प का, और बालों में श्रृंगार करते हैं राधा रानी का, और पुष्पों के बारे में क्या होता है? हाँ, पुष्प शैया राधा और भगवान कृष्ण भगवान के लिए। आप देखेंगे अभी हमारे मदन मोहन जी का आज वहां पर स्थापना चल रही है, कल रात को आदिवास था, तो वो बहुत ही सुंदर अलग अलग रंगों के अलग अलग सुगंधों से भरे हुए सुगंधित फूलों से पुष्प शैया बनाते हैं, फूलों से ही बनी होती पूरी तरह से वो, उसमें वो ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, रात भर निवास करते हैं उधर, फिर सुबह होता है नेत्र उन्मीलन, तो वो पुष्प शैया और पुष्प वितान यानी कमान, ऐसे कमान बनाते ना उसके लिए, उसको पुष्प वितान कहते हैं। तो इसके लिए इस तरह से पुष्प के विषय में जितनी भी पुष्प के कुंडल बनाते हैं, पुष्प के अलंकार बनाते हैं, पुष्प के कई प्रकार के हाथों में, कलाई में, बाजू में मालाएं बनाते हैं। अभी आप जाएंगे ना गिरधारी मंदिर में, गोपीनाथ मंदिर में, तो ऐसे पुष्प के ऐसे बनाते हैं डिजाइन में, ऐसे वो यहाँ लगाते हैं, कुछ इधर लगाते हैं, कुछ साइड में लगाते हैं, कुछ ऐसे कंड। अभी आप कभी पुष्प अभिषेक के दिन जाएंगे ना, तो पूरा ठाकुर जी का श्रृंगार वस्त्र भी पुष्प का होता है, एक दिन के लिए केवल, एक दिन के लिए पूरा श्रृंगार जो वस्त्र है पूरा पुष्प का बना दे। ये पुष्प के विषय में जो सेवा करने की निपुणता है उसकी अधिष्ठात्री देवी ललिता देवी है। शी इज द मिस्ट्रेस ऑफ फ्लावर डेकोरेशंस। और ब्रज में जितनी भी लीलाएं होती है वो सब लीलाओं का जो एक्चुअल मैनेजमेंट है वो वृंदा देवी करती है। वृंदा देवी अष्टसखी में नहीं है लेकिन फिर भी उसका विशेष विशेष स्थान है। राधा रानी भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। राधा रानी ने उनको वृंदावन भेंट में दिया है, अपने हाथों से कृष्ण भगवान के साथ विवाह करा दिया उनका वृंदा देवी का। वो वृंदा देवी जो है वो पूरा प्रभु जी यू सिट डाउन प्लीज, पूरा जो आयोजन है वो वृंदा देवी करती है। और वृंदा देवी ललिता और विशाखा देवी के आदेश से ही वो सारी सेवा करती है। मतलब कंसेप्ट इज गिवन बाय ललिता एंड विशाखा, मेनली ललिता। और वो विचार जो है वो संकल्पना जो है उसको पूरा विस्तार रूप में आयोजन जो है वो ललिता वो वृंदा देवी करती है। उसके आगे आप देखते ना हमारे मंदिर में ललिता देवी खड़ी है, गोपीनाथ मंदिर में कैसे खड़ी है वो सब दिखा सकते हैं मुझे हाथ से, ऐसे खड़ी है ना। क्या है उनके हाथ में, उनके हाथ में क्या है, लड्डू बर्फी पेड़ा पान है, उसको तांबूल कहते हैं, उसको गोविंद बिड़ा भी कहते हैं। तो ये तांबूल है ना, ये बनाने में ललिता देवी बहुत कुशल है, सबसे कुशल है। इसलिए ललिता देवी के हाथ में हमेशा तांबूल रहता है, उसमें लवंग रहता है, लौंगा इलायची गुलकंद को गोला यानी कोकोनट श्रेडेड कोकोनट ड्राई कोकोनट और बहुत सारे रंगी बिरंगी द्रव्य होते हैं। और उसे पूरा कोन समोसा बना देते उसका, उसको लौंग का क्या कहते हैं लॉक कर देते हैं उसको, और वो भोजन करने के बाद में भगवान को खिलाते हैं। आप राधा रानी के मंदिर में जाएंगे ना तो राधा रानी सामने ऐसी है, उनके लेफ्ट में जाएंगे एक कमरा है, वहां पर एक मोटे से व्यक्ति हैं दाढ़ी वाले, बहुत बुजुर्ग हैं, कई सालों से बैठकर केवल तांबूल बनाते रहते हैं, कॉन्स्टेंट प्रिपेयरिंग ऑफ तांबूल। तो राधा रानी के और कृष्ण के मुख को भोजन के बाद में आनंद देने के लिए और होठों को लालिमा देने के लिए वो तांबूल बनाते हैं बड़े प्रेम से, हरे कृष्णा। और एक राधा रानी का ललिता देवी का विशिष्ट भाव है, थोड़ा सा आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू। उस भाव का नाम है विशुद्ध खंडिता भाव। संक्षेप में समझना है तो विशुद्ध खंडिता भाव का मतलब है कि जब भी देर हो जाती है, हम लोगों को तो बड़ा अच्छा परिचय है देर होने का, सब भारतीय लोग एक्सपर्ट है इसके अंदर। देर होना मतलब हमारे बाएं हाथ का ये हाथ का खेल है हमारा, है ना। लेकिन जब ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब भी देर होती है ना, कैसे देर कैसे होती है, समझो अभी वृंदा देवी ने पूरा इंतजाम कर दिया कि आज का मिलन जो है वो करह वन में होगा, चंपकलता के गांव में होगा, उसके वन में होगा, और कृष्ण भगवान को ये सखा या ये सखियां श्रृंगार करेंगी, वो सखियां मिलकर राधा रानी को श्रृंगार करेंगी, और फिर वो 5:35:30 में उनको करह वन में ले आएंगी। तो कभी कभी कृष्ण भगवान के श्रृंगार में देर हो जाती है, कभी राधा रानी के श्रृंगार में देर हो जाती है, सब होता है, सब वहीं से आता है, वो आपके अंदर भी वहीं से आया हुआ है। लेकिन उसका एक पर्पज होता है, हमारा पर्पज तो आलस्य है, उसका पर्पज लीलाओं को वृद्धिंगत करने के लिए है, प्रेम को बढ़ाने के लिए है, हमारा पर्पज वो स्वार्थी आलस्य है। तो राधा रानी कभी कभी लेट हो जाती है और कृष्ण भगवान क्या करते हैं, जो टाइम पे आता है ना व्यक्ति वो एकदम ऐसा एकदम रेस्टलेस हो जाता है, किधर है मैं कभी कहा आ गया, किधर है वो, क्या कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फोन करते हैं, तो भाई कहाँ पर हो डॉक्टर देवलेकर, अब आए नहीं अब तक। हाँ अभी मैं चेक नाके पे फंसा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो कृष्ण का मोबाइल कौन सा है बताइए, तुरंत निकालते हैं बांसुरी बजाते हैं, और उसमें एक स्पेशल नंबर है उनका राधा रानी के लिए, वो बताओ कौन सा नंबर है, 88। कृष्ण के मुरली के तीन प्रकार होते हैं, एक होता है वेणु जो 6 इंच होता है, एक होता है बंसी जो 12 इंच की होती है, एक होती है बांसुरी, ठीक है ना, वेणु बंसी और मुरली, बंसी और बांसुरी एक ही होती है। वेणु 6 इंच की, 12 इंच की, क्या बोला, बांसुरी, और 18 इंच की मुरली। हर एक वाद्य में, मतलब हर एक वेणु में 8 छेद होते हैं, ऑल्दो दे आर लॉन्ग बट दे आर ओनली 8। तो 8 में 8 स्वर निकलते हैं और 8 स्वर के 8 परिणाम हैं, वो पूरा एक अलग प्रवचन का विषय है कि उसमें एक एक स्वर का परिणाम क्या होता है, किसके लिए होता है, कब बजता है, समय क्या है, उसका सब फिक्स है। लेकिन आप सोचिए, इसमें 7 जो स्वर है ना, वो अधिकतर पब्लिक है, मतलब समुदायों के लिए है, गायों के लिए है, गोपियों के लिए है, और चंद्रमा के लिए है, ऐसे उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। लेकिन 8वां स्वर जो है ना, वो केवल एक व्यक्ति के लिए समर्पित है, फुल्ली डेडिकेटेड टू 1 पर्सन, दैट इज राधा रानी। तो तुरंत मुरली निकालते हैं और 8वीं धुन बजाते हैं। वो जब बजता है ना, तो केवल राधा को ही सुनाई पड़ता है। जैसे हम लोग मोबाइल करते हैं ना, तो कैसे उसी को सुनाई पड़ता है, वैसे ही 8 नंबर का स्वर बजाया तो केवल राधा रानी ही सुनती है। तो भगवान, ये लीला कहाँ हुई, उधर एक अंजन वन है, विशाखा देवी का गांव है, वहां पर मिलन का समय हो गया था, कृष्ण भगवान पहले आ गए, तो उधर किशोरी कुंड के किनारे बैठकर मुरली निकाली, 8वां स्वर बजाया, तो राधा रानी यहाँ व्याकुल हो गई। अब तक तो आराम चल रहा था, लेकिन जब पता चला कि अरे राधे श्याम, महेश कुचरेकर झोपड़े का है, मागे जाए ना, जय हो, हरे कृष्णा, माफी चाहता हूं, मैं किसी का अपराध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरा थोड़ा हंसते रहेंगे तो जगे रहेंगे कि नहीं, तो फिर ऐसे ही ऐसा क्या कहते ना, ऐसा लो फ्रिक्वेंसी में प्रवचन देंगे ना ऐसे, तो आप भी लो हो जाएंगे, फिर लो होके फिर नीचे चले जाएंगे, फिर मैं ही एक ऊपर रहूंगा, आप सब नीचे रहेंगे। तो ये सब लीला हो रही है अंजन वन में, तो राधा रानी व्याकुल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। तो अभी समझो, अभी आप आराम से श्रृंगार कर रहे हो, लेकिन जब मुरली बज गई तो फिर दम, चलो चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तो फिर बाद में वो सब करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, वो जल्दी जल्दी में कहते हैं, जब छोड़ो अभी मैं जा रही हूँ, अभी रहने दो इसको, हम कहते हैं ना, ये मत करो, ये मत करो, छोड़ो अभी उसको। तो वो भाग के आ जाती है वहां पर। अब ये जो देर हो गई वाली बात है, उसको मैनेज करने का जो कुशल है, उसको विशुद्ध खंडिता भाव कहते हैं। समझ में आपका, राधा रानी वहां से देर होकर, व्याकुल होकर, रेस्टलेस होकर निकल रही है, भाग रही है अंजन वन की ओर। तो ललिता देवी साथ में है ना उसके, तो अभी आप क्या समझो, देर हो रही है आपको, तो आप क्या शांति से निकलेंगे, जब देर होती है तो आप बात भी करते रहते, चलो क्या हुआ, रिक्शा भी क्यों रुकी है, इधर अभी तो सिग्नल निकला नहीं, अभी क्यों पुलिस हाथ में खड़ा रखा है, अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, ऐसे हमारा होता ना बात। द रेस्टलेसनेस इज नॉट जस्ट इन माइंड, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मेनी वर्ड्स एंड एक्शंस, इन पल्पिटेशन, इन स्वेट ड्रॉप्स ऑन द फोरहेड, एंड सो मेनी थिंग्स। समटाइम्स जिसको रेस्ट वेट लेट हो गया है, वो किसी को पीट भी सकता है ऐसे, चलो जल्दी, क्या कर रहे हो, कितना हरी धीरे चला रहे हो, चलो जल्दी और चलाओ जोर से। उस तरह से वो जो भाव है वो राधा रानी के मन में है, लेट हो गया है, जल्दी पहुंचना है। तो वो जो स्थिति है उसको मैनेज करने में ललिता देवी बहुत एक्सपर्ट है। समझ में आया ना आप सबका, आपको विशुद्ध खंडिता, बहुत टेक्निकल चीज है लेकिन थोड़ा सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। तो फिर वो वहां पहुंचती है तो कृष्ण उसको देखकर हंसते हैं, तो कह रहे एक तो मैं इतने भाग भाग के आई, पर आप हंस रहे हो, बोला हंसू नहीं तो क्या, आपने काजल ही लगाया नहीं, काजल लगाने को भूल के आ गई आप, आपको क्या, अगर आपके मुरली बज रही तो मैं रेस्टलेस हो गई वहां पर, तो अभी मैं जाती हूँ और काजल लगा के आती हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी आप जाओगे तो फिर मैं और दुखी हो जाऊंगा, तो आपके काजल की व्यवस्था हम करते हैं। तो वहां पर एक शिला थी, उसका नाम है कजरोटी शिला, बाद में नाम पड़ा उसका, उसमें अपनी भगवान ने उंगली ऐसी घिसी तो उसमें से काजल निकला, तो भगवान ने वो काजल निकालकर राधा रानी के आंखों का श्रृंगार किया और भगवान ने उसका श्रृंगार पूरा किया। क्या हमारे लिए मैसेज है इसके अंदर, कि अगर हम प्रामाणिक हैं, हृदय से सरल हैं और बहुत समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं, तो हमारे ऐसे समर्पित भावना में जो सेवा होती है उसमें भी कमी हो सकती है, लेकिन समर्पित भावना होने की वजह से कृष्ण हमारे कमियों को पूरा कर देते हैं। जैसे राधा रानी के समर्पित भाव में काजल का श्रृंगार कमी था, उसमें कमी थी, उसको कृष्ण भगवान ने स्वयं पूरा कर दिया। तो हमारा क्या ड्यूटी है, हमको ये मानना है कि हमारे काम में त्रुटियां रहेंगी रहेंगी, लेकिन हृदय सरल होगा, प्रामाणिक होगा, निष्कपट होगा, उसमें कुछ दुटप्पी भाव नहीं होगा, डुप्लिसिटी नहीं होगा, तो हमारे सेवा की कमियों को कृष्ण भगवान ही पूरा कर देते हैं, और पूरा करके फिर स्वीकार भी कर लेते हैं उसको, हमको कोई दुख करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कथा बताई विशुद्ध खंडिता भाव को समझाने के लिए। अभी आपको मैंने बताया कथा में कि जब भी ब्रह्मा जी ने बालकों को चुराया था तो सभी बालक भगवान बने थे ना, भगवान सब बालक का रूप धारण किया था। तो उस वर्ष में कृष्ण भगवान ने निर्देश किया पिताजी को और सभी गोपियों का सभी गोपों के साथ विवाह कर दिया, जितने भी बालक सबका विवाह हो गया। तो ललिता देवी का विवाह जो है वो भैरव नाम के गोप से हुआ, और ललिता देवी के कई विवाह हुए हैं वैसे, मतलब कृष्ण के साथ हुए हैं, भैरव के साथ भी हुआ है, भैरव के साथ में तभी हुआ था जिस उस इस साल में। लेकिन ललिता देवी पर कृष्ण राधा रानी इतना प्रेम करती है कि भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन, हमारे यहाँ भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के एक दिन बाद वो होता है अनंत चतुर्दशी, गणपति विसर्जन, उसके एक दिन पहले, आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, उसके एक दिन पहले यहाँ पर पहाड़ पर ब्याहुला होता है। ब्याहुला, आप में से कोई जा रहे हैं ना ब्याहुला में, राधा वल्लभ जी मंदिर में? हमारे ठाकुर जी को बार बार विवाह करने में आनंद आता है, आप में से कोई भी स्पॉन्सर करेगा तो वो विवाह करने का तैयार है। हाँ, वे कभी भी आप जाइए राधा वल्लभ मंदिर में, वृंदावन में, और कहिए कि आज हमको उनका ब्याहुला करना है, मतलब शादी करवानी है, तुरंत सज धज के तैयार, उसमें पेड़ों के, फलों के, सब्जियों के, और बहुत सारे मटर वगैरह के डेकोरेशन करते हैं, केले के खंबे को काट कर उस पर सब्जियाँ, ककड़ी, कॉलीफ्लावर, गोभी, ये सब चिपका देते हैं, बहुत सुंदर फल फूल लगा देते हैं, बहुत श्रृंगार अच्छा करते हैं, और फिर उनको बाहर लेके आते हैं, और दोनों ऐसे वो फूलों का होता है ना वो, और एक फूलों का दुल्हन को पहनाते ना ऐसे पूरा बंद चेहरे को, क्या बोलते हैं उसको, सहरा, सहरा, वो सहरा बना कर उनको लेके आते हैं, ऐसे लगते हैं, और उनका विवाह होता है। तो वो ब्याहुला राधा रानी ने अपने हाथों से ललिता देवी का कृष्ण भगवान के साथ विवाह किया है, वो एक स्थान ऊपर है। उधर ऊपर और एक स्थान भी है जहां पर प्रेम से कृष्ण भगवान ने ललिता देवी की गाय का दुहन किया था, मिल्किंग। तो ललिता देवी ने उस गाय के बछड़े को अपने हाथ में पकड़ा था, और कृष्ण भगवान ने जमीन पर बैठकर ललिता देवी की गाय का दूध निकाला था। वो दूध दोहन स्थली भी वहीं पर है, और झूला स्थली भी है जहां पर ललिता देवी के साथ में झूला झूला है, राधा रानी ने झुलाया है विवाह करने के बाद में। और जब ललिता देवी का विवाह हुआ तो श्रृंगार तो किया हुआ ना, कैसे खड़ा कर दिया, सब श्रृंगार किया, मेहंदी लगाई, बहुत सारे सुंदर पैरों को लगाई, तलवों को लगाई, हाथों को लगाई, बहुत सारा सुंदर श्रृंगार किया। और वो श्रृंगार करने के बाद में उसी पहाड़ पर एक शिला है जिसका नाम है स्खलनी शिला, लोकल भाषा में फिसलिनी शिला, तो उसमें बैठकर ललिता देवी और कृष्ण भगवान ऐसे क्या कहते हैं उसको, फिसले हैं, अभी जब फिसलते तो पैर कैसे रहते, ऐसे रहते ना, तो ऐसे फिसल रहे हैं। तो जाके एंड कहाँ होता है, जहाँ पर एक शिला आती है वहाँ पर एंड होता है, तो वहाँ पर जाकर वो दोनों चारों पैर जाके रुक जाते हैं ना, तो पैरों के तलवों का स्पर्श उस शिला को होता है। अभी पहाड़ में क्या परिणाम हो रहा है, जब लीला हो रही है बताइए, जब पहाड़ों पर लीला हो रही है तो क्या होता है, पहाड़ पिघलने लगते हैं भाव से, भाव से विभोर हो जाते हैं पहाड़। तो जैसे लीलाएं हो रही, विवाह हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो पहाड़ ऑलरेडी दोलायमान है, प्रवाहित हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। तो जैसे जाके पांव तलवे चिपकते हैं तो सारे मेहंदी के निशान उस तल शिला पे आ जाते हैं, तो वो शिला का नाम है मेहंदी शिला, एक फिसलनी शिला, सामने मेहंदी शिला, और बहुत सारी शिलाएं हैं। उधर और भी लीलाएं हुई है, जब राधा रानी रुटती है ना भगवान के ऊपर तो कभी कभी यहां पे आके बैठ जाती है, कैसे, अभी समझो आपको राधा रानी का कृष्ण का मिलन होने वाला है, प्लानिंग हो चुका है, अभी यहां मिलना है, लेकिन शायद कृष्ण भगवान आए ही नहीं, या तो बहुत देर से आए, या तो और बहुत सारे कारण है उसके, वो भी एक अलग प्रवचन का विषय है, किन किन कारणों से राधा रानी को क्रोध आता है, मान करती है वो, तो एक कारण समझो लेट आते हैं। तो एक दिन वो सज धज के पूरा मेहंदी लगा के सब कुछ हो गया लेकिन आए नहीं, तो रूठ कर वो यहाँ आके बैठ गई। और आप जानते ना, जब ये लड़कियां छोटी सी रूठती हैं तो क्या करती हैं, ऐसे अपने हाथ को ऐसे 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 क्रोध में, आंखों से आंसू आ रहे हैं, हाथ का ऐसे ऐसे मल रहे हैं, तो तो वो हाथों की सारी मेहंदी जो है ना वो शिलाओं पे आ जाती है, तो वो भी मेहंदी शिलाएं हैं जो राधा रानी के हस्त स्पर्श से बनी हुई है, वो भी शिला वहां पर है जो राधा रानी ललिता देवी और कृष्ण के चरण स्पर्श से हुई है। ऊपर और एक स्थान है, 56 कटोरा। जब एक बार कृष्ण भगवान ग्वाल बालों को लेकर वहां पर गाया चराते रहते आए थे तो ललिता देवी ने उनको पत्थर में बने हुए कप से दूध पिलाया था। 56 कटोरा नाम का जगह है और बहुत सारे ऐसे कप्स बने हुए हैं पहाड़ पर। तो इसका महात्म्य सखीगिरी का ही, सखीगिरी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ऊंचे गांव के लीलाओं में, बहुत प्राचीन और बहुत ही दिव्य स्थान है। फिर अभी समय थोड़ा सा कम है अपने पास, सब कुछ देखना भी है, कोई बात नहीं। ललिता देवी का एक स्थान है नंदगांव में, कितने लोग गए वहां पर ललिता कुंड पे? नंदगांव में एक उनका एम्बेसी है। मतलब क्या है, ललिता देवी एक ही ऐसी हिम्मत वाली और तेज गोपी है जो नंदगांव के अंदर अपना स्थान बनाकर वहां पर निगरानी रख सकती है क्या चल रहा है। तो वो उनका एम्बेसी है वहां पर, वो उनका स्थान है ललिता कुंड। वहां पर राधा ललिता बिहारी का विग्रह भी है, बहुत सुंदर जीर्णोद्धार भी उसका हुआ है। तो वो स्थान का कनेक्शन यहाँ इस जगह से भी है, बरसाने से भी है, प्रेम सरोवर से भी है। संक्षेप में कि जब कृष्ण भगवान और राधा रानी दोनों रावल और गोकुल से यहाँ पर आए ना, सेकेंड टाइम शिफ्ट हो गए ना, उनका जन्म होने के बाद वो सब शिफ्ट हो गए। हमने कहा ना कल अर्ध चंद्रा कार्ड चुड़ावत, कल बताया था ना शकट अंध्र चंद्र अर्ध चंद्रावत। तो वो होने के बाद यहाँ पर आए तो यहाँ पर अभी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। यहाँ पर एक बिन राधा रानी प्रेम वन, यहाँ पर प्रेम वन है थोड़ा सा आगे है, तो उसमें वो लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। तो किसी को आंख पट्टी बांधना होता है और गोल गोल घुमाना होता है और छोड़ देना होता है, बाकी सब लोग छुप जाते हैं और उनको उस पर पकड़ना है। तो वो एक सखी को घुमा दिया और राधा रानी छुपने गई, इधर गई, सब लोग चले गए। तो राधा रानी प्रेम वन के एकदम अंधकारमय घने वन में कुंज में गई, अंधकार था, मतलब क्या अंधकार, दिन का नहीं, मतलब पेड़ों से ही अंधकार था, इतना सघन वृक्षावली थी वहां पर। तो राधा रानी वहां जब छुपने गई तो उसको वहां पर एक नीला बालक दिखाई दिया, बहुत सुंदर सा पीतांबर पहना हुआ, मोरपंख धारण किया हुआ, हाथ में मुरली, और वे ऐसा खोया खोया सा ऐसा घूम रहा है उधर। तो ये दोनों ही हुए उधर, वो खोया खोया सा बालक मुरली वाला और एक कन्या जो छुपने आई है वहां पर। तो जैसे नजर पेट होती है ना, दोनों के हृदय में ऐसे प्रेम के फुवारे फूटते हैं, हृदय पिघलने लगता है, इतना प्राकृतिक स्पॉन्टेनियस स्वयं स्फूर्त प्रेम प्रकट होता है। लेकिन राधा रानी के सौंदर्य और उनके प्रति प्रकट हुआ प्रेम देखकर कृष्ण भगवान वहीं बेहोश हो जाते हैं, श्याम सुंदर जी वहां पर बेहोश होकर मुरली वर्ली लेकर गिर जाते हैं। और राधा रानी उनको इतना प्रेम हृदय में प्रकट हो गया है तो उनको सवारने जाती है ना, उतने में आवाज आती है ललिता देवी की, अरे चलो चलो पकड़ा, पकड़ी गई। तो इनका भी दुविधा हो गई, जाऊं कि नहीं जाऊं, मतलब अभी बहुत गंभीर अवस्था है ना, अभी कोई बेहोश गिरा है जिसको प्रेम भी हो गया है, और भी इसको छोड़ के जाऊं कि वो सुनूं कि यहीं रहूं उसकी शुश्रूषा करूं। लेकिन बार बार पुकार आते, अरे कहाँ हो श्री जी, कहाँ हो, चलिए आ जाओ। तो वो उसको बेहोश छोड़कर ही चले जाते, लेकिन इतनी उदास होती है उसकी वजह से खेलना ही छोड़ देती है, एकली एकांत में बैठ जाती है। फिर वो गेम ही समाप्त होता है, क्योंकि राधा रानी नायिका है, वो ही उदास हो गई तो फिर पता नहीं क्यों उदास है, लेकिन उसका खेल समाप्त हो गया। उसके बाद में राधा रानी अपने महल में जाती है, ना खाती है, ना पीती है, ना खेलती है, ना बात करती है, कुछ नहीं, पूरा रोना ही रोना है बस, बताती नहीं क्या हुआ। कीर्ति मैया परेशान, वो ललिता को बुलाती है, क्या बात है? तो कहती है मुझे एकांत में बात करने दो। तो फिर जाके ललिता को समझाती है कि ऐसे ऐसे मैं वन में गई थी उस दिन लुका छुपी के खेल में, तो एक नीला सा सुंदर बालक वहां पर आया था, उसको देखकर मैं मोहित हुई थी और तो वो बेहोश हो गया, और तुमने मुझे इतनी बार बुलाया कि मैं उसको बेहोश छोड़कर ही चली आई, इसलिए मैं नाराज हूँ। बोले कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ वो बालक को, मैं ढूंढ के आऊंगी उसको। तो वो सीधे नंदगांव पहुंचती है, वहां पर यशोदा रानी परेशान, क्यों? क्योंकि कुछ देर बाद हमारे कन्हैया जी होश में आते हैं और देखते हैं वहां पर कोई नहीं है, और उस बालिका की याद आती है उनको, जिसको देखकर बेहोश हो गए थे। तो बहुत रोते बहुत रोते बहुत रोते हैं, सीधे वहां से उदास होकर घर चले जाते हैं। उसके बाद ना माखन खा रहे हैं, ना गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, ना गौ चारण कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो यशोदा माई परेशान, तो ललिता को आते हुए दिखते, अरे ललिता आ जा आ जा, जा बहुत अच्छे समय पर आई तुम, देखो लाला हमारे दुखी हैं, उदास हैं, कुछ बोलते नहीं है, कारण क्या है, रोते 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 जा रहे हैं, तुम कुछ उपाय करो। बोले मैं जानती हूँ उसका उपाय, केवल मुझे एकांत में मिलना पड़ेगा उसको, एकांत में मिलो कैसे भी मिलो, सब परमिशन है तुम्हें, उसको ठीक करो आप। तो एकांत में ललिता जी मिलती है और पूछे क्या बात है, तो ललिता देवी को बताते हैं वो ऐसा ऐसे हुआ, मैं गया उस सघन वृक्षावली में और सुंदर कन्या वहाँ पर गौरवर्ण की आई थी, नीली साड़ी पहनी थी, गुलाबी ब्लाउज पहना था, इतना सुंदर रूप था उसका, कुछ बात होने के पहले ही पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं बेहोश हो गया और बेहोश होकर उठा तो वो कन्या गायब थी। तो मैं जानती हूँ उसको, तो फिर मैया ने कहा, मैया को कहा कि इसका मुझे स्पेशल इलाज करना पड़ेगा, इसको ये बीमारी हो गई है कि मुझे कुछ कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारी विधि है उसके अंदर, मुझे ले जाना पड़ेगा इसको जो करना है करो, फुल परमिशन है। तो फिर वो लेके आती है उनको ललिता कुंड पे, अभी आया कनेक्शन संबंध का, ललिता कुंड पे जाके उसको नहलाती है, फिर वहां से लेकर उसको वस्त्र पहनाते हैं। वो एक गांव है, उसका नाम है पहनावली, वो भी नंदगांव में है। तो पहनावली गांव में उनको दुल्हे के वस्त्र पहनाते हैं। फिर आगे गांव है कजरोठा, वहां पर उनको काजल लगाते हैं और फिर दुल्हा बनाकर एक प्राइवेट जुलूस निकालकर उनको लेके जाते हैं प्रेम मन में, वहां पर संदेशा भेजते हैं कि मिल गया वो, अब इसको भी श्रृंगार करो। तो ये भी श्रृंगार करने लगती है, फिर उनको लेकर प्रेम वन में आते हैं और प्रेम मन में उनकी पहली मुलाकात होती है। ये सारा जो है ना, क्या कहते हैं उसको, डायग्नोसिस, प्लानिंग द ट्रीटमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड सक्सेस इन ट्रीटमेंट, ये सारा जो स्टेप्स है वो ललिता देवी के नेतृत्व में होता है। तो ललिता देवी ने राधा और श्याम सुंदर का पहला मुलाकात प्रेम वन में किया है, उसके आगे जाकर वहां पर उनके आंखों से अश्रु बहे हैं और प्रेम सरोवर निर्माण हुआ है, दैट इज लेटर ऑन। और उधर ललिता देवी के नेतृत्व में प्रेम सरोवर में डोंगी लीला यानी बोट बोट की पास टाइम भी, नौका विहार भी होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम सब लोग ललिता के सेवक हैं विशेष रूप से, क्योंकि वही राधा रानी की सेवा हमको देती है। ललिता देवी को राधा रानी का ऐसा आदेश है कि विश्व में जो भी कृष्ण के प्रति थोड़ा भी स्नेह रखता है उसको आपको ढूंढ के निकालना है और मेरे पास लेके आना है उसको। लेकिन ललिता देवी बहुत दयालु है, वो समझो हमें परिपूर्ण भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी इच्छा है, बहुत सारा विकार भी है, बहुत सारे डिजायर्स भी है हमारे अंदर, लेकिन थोड़ी थोड़ी इच्छा है, फिर भी हमें तुरंत वो स्वीकार कर लेती है। लेकिन उनकी एक विशेषता है कि वो हमको अपने गोद में रखकर पूरा तैयार भी करती है, परिपूर्ण, शी प्रिपेयर्स अस टू बी रेडी टू बी ऑफर्ड टू राधा रानी। ये ललिता देवी की विशेष कृपा है हमारे ऊपर कि राधा रानी को भगवान को अर्पण करने योग्य बनाती है हमें, और फिर राधा रानी को अर्पण करती है, फिर राधा रानी कृष्ण को अर्पण करती है। और ललिता देवी जिसकी सिफारिश राधा रानी से करती है उसको राधा रानी मना नहीं कर सकती है, और जिसकी सिफारिश राधा रानी कृष्ण से करती है उसको कृष्ण मना नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सब जगह से ही लाभ ही लाभ है, ठीक है ना। तो सभी हम सब लोग ललिता देवी के प्रधान ललिता हमारी प्रधान नायिका हैं, प्रधान इष्ट हैं, रूपमंजरी के माध्यम से जो उनके प्रथम सेवक हैं, जिनकी हमने संप्रदाय में हम शरणागत हैं, वो सभी परम सखियों की नेता हैं। उसके पिताजी बहुत ही महान गोप थे और सभी लीलाओं के पीछे प्रेरणा राधा ललिता देवी हैं। हमेशा लीलाओं को वृद्धिंगत करने के लिए कृष्ण की योजनाओं को हमेशा छेद देती है वो। मदर कृष्णा से सी कट्स इट एंड डज एग्जैक्टली अपोजिट। और कई बार नियमित रूप से इनको क्रोध भी आता है कृष्ण के ऊपर, और राधा कृष्ण का प्रेम बढ़ाने के लिए बहुत ही क्रोध से कृष्ण से बात करती हैं। अच्छा, उनकी और एक विशेषता है, वो ना पजल्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। उसको क्या कहते हैं, रिडल, व्हाट इज दैट कॉल्ड, रिडल्स, पजल्स होता है वो बनाने में, और इसमें राधा रानी और कृष्ण को एंगेज करके उनको आनंद देने में बहुत कुशल है वो। और उनकी एक विशेषता है, वो इंद्रजाल नाम की विद्या में बहुत निपुण है। पता है इंद्रजाल, बचपन में पढ़ा होगा ना कॉमिक में, इंद्रजाल ऐसा हाथ घुमाते कुछ हो जाता है, उसके बाद इंद्रजाल की जो है ना वो जादू मैजिक और जगल 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 एंड मैजिक इसमें बहुत एक्सपर्ट है। वो सारी कला क्यों है? राधा कृष्ण को आनंद देने के लिए है। और विशुद्ध खंडिता का भाव का मैंने ऑलरेडी वर्णन कर दिया आपके लिए। और एक और ललिता कुंड है, वो कहां पर है? एनी गेस? वो गोवर्धन में है, राधा कुंड और श्याम कुंड के पास में है। जो राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण हुआ तो सभी सखियों ने भी अपने अपने कुंड उसके इर्द गिर्द बना दिए। जैसे यहां पर कैसे 8 गांव हैं, वैसे वहां पर भी उन्होंने 8 कुंड बना दिए, लेकिन समय के अनुसार सब नष्ट होते गए। अभी ललिता कुंड वहां पर अभी भी विराजमान है। तो कहते हैं ललिता देवी ने तो उसी समय अपना कुंड बनाया और राधा कुंड से जल लेकर अपने कुंड में उसको अर्पण किया। और जब वो ये कर रही थी तो कृष्ण भगवान ने ऐसा लीला किया कि राधा कुंड में प्रवेश करने के लिए उन्हें तो छेद तो किया ही था श्याम कुंड से, अपने जल को प्रवाहित किया था राधा कुंड में, तो उन्होंने और एक छेद करके ललिता कुंड में वो जल प्रवाहित कर दिया। ये उनके प्रेम का प्रतीक है, राधा के प्रति भी और ललिता के प्रति भी। इसलिए उन्होंने जल के रूप में राधा कुंड में और फिर ललिता कुंड में प्रवेश कर दिया। तो अभी हम लोग तो वहां पर नहीं गए हैं, यहीं से हम लोग उसको ललिता कुंड को प्रणाम करते हैं। हाँ, सब लोग बोलेंगे मेरे बाद में, नमो पातक विघ्न अघ्नौ ललिता मोहनौ शुभौ स्नपये हम विमोक्षय, शुभौ स्नपये हम विमोक्षय, कुंडौ नीर मनोहरौ। ललिता कुंड को हम प्रणाम करते हैं जो बहुत सुंदर है, इसमें स्फटिक से भी अधिक चमत्कार जल है जो सभी लोगों को जो स्नान करने वालों को मुक्ति प्रदान करते हैं। वो ललिता देवी के कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है और शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा में जो बाधाएं आते हैं उसका नाश कर देते हैं। ललिता देवी का मैंने ना ये जो एबॉर्शन विषय है ना, एबॉर्शन MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इस पर मैंने बहुत ही पढ़ाई लिखाई संशोधन किया है कि भाई ये एबॉर्शन के लिए कोई माफी है क्या किधर? तो शास्त्र में कहीं भी भ्रूण हत्या के लिए बालक को गर्भ में जो मारते हैं ना स्वार्थ के लिए, उसके लिए कोई उपाय नहीं है उसके ऊपर। पर शाप क्या है उसका? जो व्यक्ति किसी भी असहाय बालक का गर्भ में नाश कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, कई कारणों की वजह से, करियर है, फिगर है, यौवन है, नई शादी है, पैसे नहीं है, ये है वो है, फलाना फलाना, किसी बलात्कार हुआ है, किसी के ऊपर कुछ हो गया है, बच्चा अंदर रोगी है, बहुत सारे कारण होते हैं उसके, लेकिन फिर भी जो करता है एबॉर्शन, शास्त्र में लिखा है उस व्यक्ति को कराने वाले को, एक व्यक्ति नहीं होते उसके अंदर, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर होता है, पहले सलाहकार होता है कि जाओ करो, इंस्पायरिंग एक होता है, चाहे वो सासू हो या ननदी हो या क्लास फ्रेंड हो, बोलते हैं कि क्यों अभी करा दो। दूसरा होता है उधर जाओ, वो कराते हैं, उधर गए तो रिसेप्शनिस्ट है, उधर गए डॉक्टर है, नर्स है, वार्ड बॉय, पूरा नर्सिंग होम का सेटअप है उसके अंदर। जितने भी लोग इन्वॉल्व है वो सभी लोगों को, केवल कराने वालों को नहीं, जो करने को अनुमति देते हैं, करने को प्रेरणा देते हैं, करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, करने को सहायता करते हैं, धन की सहायता करते हैं, हौसले की सहायता करते हैं, जो भी करते हैं इस विषय में, वो सभी व्यक्तियों को, केवल पति पत्नियों को नहीं या सासू को नहीं, सभी लोगों को ये शाप प्राप्त होता है कि उनको दिन की रोशनी कभी दिखाई नहीं पड़ेगी। इसका अर्थ समझते हो आप? क्या आपका इंटरप्रिटेशन है बताइए? एक उनका इंटरप्रिटेशन है कि वो ब्लाइंड हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है ब्लाइंड व्यक्ति को दिन रात का फर्क समझता नहीं? आप आंख में पट्टी लगा दो और आपको पूछा जाए कि दिन है कि रात है, आप बोलेंगे दिन है, क्योंकि फिर भी आपको वो समझता है ना, आप भी आंख बंद करके ऐसे देख रहे हो तो आपको और बढ़ता है कि दिन हो गया, अभी 8 बज गए, उठना चाहिए, कितना भी अंधेरा करो फिर भी आपको पता चलता है कि दिन आ गया है। तो हो सकता है ये भी हो, लेकिन उसका एक अर्थ ऐसा है कि गर्भाशय ऐसी जगह है जिसमें पूरा अंधकार होता है, कोई लाइट नहीं पहुंचता है उसके अंदर, इतने प्रकार के मसल्स है, स्किन है, स्किन के लेयर्स है, उसके अंदर मसल्स है, उसके शीथ्स है, उसके अंदर इंटेस्टिनल कवरिंग है, उसके अंदर पेरिटोनियम है, उसके अंदर गर्भाशय का अपना अपना कवरिंग है, उसके अंदर गर्भाशय के मसल लेयर्स है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, उसके अंदर बेबी है। तो कहते हैं वो सबसे काल कोठड़ी वही है अंदर, कोई अंदमान में नहीं है, किधर भी नहीं है, ऐसे कोठड़ी भगवान ने बनाई है नेचुरल। तो अगर उसको शाप मिला है कि उसको दिन का रोशनी दिखाई नहीं पड़ेगा, तो बालक को गर्भ से दिन की रोशनी कब दिखाई पड़ती है? जब उसका जन्म होता है। और शाप दिया है कि नहीं पड़ेगी रोशनी, दिखाई नहीं पड़ेगी, मतलब क्या हुआ? उसका भी बार बार एबॉर्शन होता रहेगा, वो कभी गर्भ से जन्म रूप में बाहर ही नहीं आएगा। तो मैं सोच रहा था अभी इसके लिए क्या है, तो मेरे पढ़ाई में एक बार ऐसा आया कि ललिता कुंड वो स्थान है जिसमें 7 प्रकार की हत्याओं का भी शालन हो जाता है। यू आर रिलीव्ड ऑफ द सीन ऑफ भ्रूण हत्या ऑल्सो। वो 7 हत्या कौन सी है? मनुष्य की हत्या यानी खून, मर्डर, कृमि हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, श्वान हत्या, आत्महत्या, कुत्ते को मारना भी बड़ा अपराध माना गया है, यानी किसी भी जीव को मारने का अपराध माना गया है। उसमें ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या, गौ हत्या सबसे जघन्य है, उतना ही शक्तिशाली पर पाप जो है वो भ्रूण हत्या है, एबॉर्शन ऑफ द बेबी। लेकिन भगवान की दया से वो भी वहां पर क्षालन हो जाता है। ज्यादा करके किसी को बताना नहीं आप, ये उनको मनाई कर देना ये सब करने के लिए। बेस्ट सॉल्यूशन इज टू अवॉइड, प्रिवेंट, प्रीच टू स्टॉप अबॉर्शन। और कर दिया है तो फिर उसके लिए अगर भगवान का जप करने की इच्छा तैयारी है उनकी, अगर भक्त बनने की तैयारी है, वास्तव में पश्चाताप हो रहा है, तो उनको ललिता कुंड का एड्रेस दे देना, वहां के स्नान करें। ठीक है, तभी आप एक ललिता देवी का एक मंत्र बोलेंगे उनको प्रणाम करने के लिए। गोरोचन रुचि मनोहर कांति देहम मयूर पुच्छ तुलिता छवि चारु चैलम राधे तव प्रिय सखिम च गुरु सखीनाम तांबूलम भक्ति ललितम ललिताम नमामि। क्या अर्थ है उसका? कि वो जो है ना, एक गाय के अंदर एक वस्तु होती है जो गॉल ब्लैडर से निकलती है, कभी नाक से भी निकलती है, उसको कहते हैं गोरोचन। वो एक ऐसा येलोइश ग्रीन रंग का होता है, वो रंग ललिता के शरीर का है, मनोहर कांति देहम। और वो वस्त्र कौन सा पहनती है? मयूर पुच्छ के बना हुआ वस्त्र पहनती है। उसका उनका जो वस्त्र है या तो मयूर पुच्छ के रंग का होता है या तो मयूर पुच्छों से ही बना होता है। इसलिए ललिता षष्ठी उनके जन्मदिन पर ललिता देवी को मोरपंख का ड्रेस पहनाते हैं। और राधे तव प्रिय सखी, राधा रानी की प्रिय सखी भी है वो, च गुरु सखी नाम, मतलब गुरु सखी भी है, गुरु भी है और प्रिय सखी भी है। और तांबूल जो है उनके सेवा का प्रधान कार्य है, तांबूलम भक्ति ललितम ललिताम नमामि। ललिता नाम का शब्द का और एक भी अर्थ है जो कृष्ण को भी हम जोड़ते कभी कभी, ललित मोहन, यानी जो श्रृंगार करने में बहुत निपुण है, खुद का भी और दूसरे के लिए भी, एक्सपर्ट इन ड्रेसिंग अप एंड एक्सपर्ट इन ड्रेसिंग अदर्स ऑल्सो। तो ललिता देवी की एक और सेवा है, दो सेवा बताना भूल गया मैं, एक और सेवा है, राधा और कृष्ण को श्रृंगार करने में बहुत निपुण है वो, वेरी 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 एक्सपर्ट। और राधा और कृष्ण को हास परिहास में टू एंटरटेन, मनोरंजन करने के लिए भी बहुत कुशल है वो, हास परिहास करने की कला में निपुण है। एक और बताना भूल गया मैं, वो कौन सा है बताइए, लास्ट वाला, ललिता जी स्पेशलिटी इन सर्विस, वो होता है पत्रावली सेवा। अभी बताइए पत्रावली क्या होता है? पत्रावली यानी खाण्याची पत्रावली, आपल्याला तेच आठवते पत्रावली म्हटलं की लगेच जेवण आठवते। वो महाराष्ट्री में एक पत्रावली मतलब वो भोजन, लेकिन ब्रज में पत्रावली का मतलब होता है राधा और कृष्ण के मुखमंडल पे जो डिजाइन बनाते हैं ना, उसको पत्रावली कहते हैं। अभी टाइम है पत्रावली को, दोपहर 1 बजे पत्रावली आएगी, डोंट वरी। तो ललिता देवी पत्रावली सेवा में बहुत ही कुशल है, राधा और कृष्ण के सुंदर मुखमंडल को पत्रावली डिजाइन से बहुत सुशोभित करती हो। जैसे आप राधा उधर जाएंगे ना, श्याम सुंदर मंदिर में वृंदावन में या दामोदर मंदिर में जाएंगे, तो इतना मुख में इतना श्रृंगार करते हैं, बहुत सुंदर, रंगी बिरंगी भी करते हैं, चंदन से ही करते हैं, लेकिन चंदन में भी गुलाबी, हिरवा, हरवा, हरा रंग सब मिक्स करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हैं उसका। और एक मंदिर है, मैं आपको बताता हूँ कभी आपको मौका मिलेगा तो, एक मंदिर राधा वल्लभ जी मंदिर के सामने है, अठखंबा मंदिर कहते हैं उसको, वो कौन से गोस्वामी है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का मंदिर है वो। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जो पूजित विग्रह है वो उस मंदिर में है, और उस मंदिर में ये पत्रावली सेवा बहुत सर्वश्रेष्ठ होती है। और सांझी लीला में जो रंगोली बनाते हैं उसके अंदर भी बहुत सर्वश्रेष्ठ रंगोली वहां बनाई जाती है। ठीक है, अभी देखिए हम यहां जो बैठे ना, ये जो जगह है इसका नाम है देह कुंड। ये बहुत ही उत्कट तपस्थली है, यहां पर स्वयं गोपियों ने तप किया है, कृष्ण के विरह में राधा रानी और सब गोपियों ने मिलकर यहां पर तप किया है। और तप के अंत में अपने पूरे शरीर को पूरे श्रृंगार अलंकार सारे पोजेशंस के साथ में इस देह कुंड में अर्पण कर दिया है। तो ये देह कुंड जो है ना वो त्याग करने की जगह है। धन तो हम देते ही हैं, लेकिन त्याग यहां पर क्या करना चाहिए, हमारे मन के जो विकार हैं जो भगवान से हमको अलग करते हैं, क्रोध लोभ काम वासना मद मत्सर एनवी, ये सब त्याग करने की जगह है। तो देह कुंड पर कहते हैं कि राजा रानी का पल्लू जो है वो इतना विरह में उष्ण हो गया था कि उससे यहाँ के पत्थर भी पिघल गए थे, और फिर उन्होंने अपने शरीर को सारे श्रृंगार के साथ में इसमें अर्पण कर दिया। इस तरह से ललिता देवी का गौरव बहुत ही मतलब अनंत है, क्योंकि ऐसी कोई लीला नहीं है जिसमें ललिता देवी नहीं है। बताइए कौन सी लीला ऐसी है। ललिता देवी का कृष्ण भगवान राधा रानी के हर एक लीला में अंतर्भाव है। ललिता कुंड पे और एक लीला हुई है, राधा रानी और कृष्ण का वहां पर झूला झूलने का प्लान था वो दिन वृंदा देवी की प्लानिंग के अनुसार, तो राधा रानी लेट हो गई। ललिता कुंड है तो वो तो उसकी होस्ट है ना, होस्टेस है, तो वो वहां पर पहले से मौजूद थी श्रृंगार करके, और कृष्ण भगवान भी आ गए और वेट कर रहे हैं। तो वहां पर नारद मुनि आते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, सबको आनंद देने के लिए, सबको नींद से उठाने के लिए, हाँ कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो ललिता को कहते हैं कि अभी झूला रेडी है, आप तैयार हो, कृष्ण भी तैयार है, राधा रानी को दे रहे, तो हम सबकी इच्छा है कि आप झूलो कृष्ण के साथ। तो सब सखियां भी बोलती हैं हाँ हाँ ये आइडिया अच्छा है, और आप जब राधा रानी आएंगे तो वो भी झूलेगी। तो ललिता देवी संकोच करते हैं, नहीं नहीं उनको झुलाने का प्लानिंग है तो हम उनको ही झुलाएंगे, हम इंतजार करेंगे। तो नारद मुनि बहुत चतुर हैं, वो पीछे लग जाते हैं उनके, और कभी कभी कैसे करते हैं, समझो अभी मेरी समझो ऐसी इच्छा है, क्या आपका नाम क्या है, स्वयंभूनाथ दास, मेरी ऐसी इच्छा है कि ये डांस करे और आप देखें, और ये मना मना कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा, बोलो स्वयंभूनाथ प्रभु को डांस करने की किसकी इच्छा है, हरि बोल बोलो, है ना, ऐसा होता है ना। नारद मुनि ने ऐसे ही किया, बोलो बोलो ललिता देवी की कृष्ण के साथ झूले ऐसे किसकी इच्छा है, सब लोगों ने हरि बोल बोल दिया। तभी वो क्या करेंगे, अभी वो हाँ ना में मनाया उनको, और कृष्ण भी बोले हाँ हाँ ठीक है मैं भी तैयार हूँ, मेरी भी इच्छा है कि आप झूलो मेरे साथ। तो फिर वो राधा रानी के लिए बनाया हुआ झूला जो था उसके अंदर ललिता देवी को बिठा के कृष्ण को बिठा के झूलना आरम्भ हो गया, और उतने में तुरंत नारद मुनि सटक गए वहां से, सीधे बरसाने में आए, बोले क्या कर रही हो, इतना देर लगा रही हो, हाँ ये भी कोई तरीका हुआ, कितना देर से इंतजार कर रहे हैं, अभी इंतजार कर करके परेशान हो गए, अभी ललिता देवी को बैठ कर झुला रहे हैं। राधा रानी बहुत परेशान हो गई, सीधे भागी वहां से, और दूर से देखा अरे क्या मजे से झूल रहे हैं, तो वहीं से वो क्रोध करके चली गई। एक और कारण क्रोध का उनका, मान होने का। तो ये लीला भी ललिता कुंड पे हुई है, वो ललिता कुंड की लीला है, सुंदर लीला है बहुत। क्या क्या बताऊं, अभी थॉट हमें कम है, एनीवेज कोई बात नहीं, चलो। हाँ तो यहाँ पर ये राधा कृष्ण ललिता की बहुत सारी लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं, लेकिन और कुछ चीजें भी यहाँ पर हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल रेवती जी का विवाह बलराम से हुआ, जानते ना, वो रेवती बहुत ही ऊंची थी सत्ययुगी, और बलराम जी द्वापर युग के कद के थे। जब विवाह निश्चित हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास गए थे वो बेचारे, उनके पिताजी रेवत राजा, ब्रह्मा ने कहा कि उनके लिए पृथ्वी पर कोई योग्य वर नहीं है सिवाय बलराम के। तो फिर वहां से लौट के आते नीचे और देखते तो बलराम जी इतने से रेवती जी आसमान में। तो बलराम जी कहते कोई बात नहीं, बलराम ने हल उठाया श्ट। कंधे पे अटकाया और सीधा नीचे किया, अपने कंध के बराबर किया, परफेक्ट, और उनका विवाह हो गया। बोलो बलराम रेवती भगवान की। तो फिर वो रेवती जी का और ललिता जी का बहुत मित्रता थी, दे वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, हाउ आई डोंट नो बट दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो नई नई शादी करके रेवती जी अपने पति बलराम को लेकर ललिता जी के पास आई थी, यहाँ पर रुकी थी बहुत दिन तक, इसलिए यहाँ पर बलराम जी का मंदिर है, रेवती बलराम जी का। तो वो उनके मित्रता और प्रेम का और यहाँ के निवास का प्रतीक है। तो अभी एक और चीज है, यहाँ पर ब्रजवासी आकर कृष्ण भगवान को बोले, अरे वो तो त्रिवेणी में वो कुंभ मेला लग रहा है, अभी लग रहा है ना, अभी चल रहा है। तो यहाँ के लोग ने कहा, अरे इतना दूर कौन जाएंगे, ठंड का समय है, हमें आप त्रिवेणी के दर्शन यहीं करा लो, हमारी इच्छा है कि यहीं त्रिवेणी प्रकट हो जाए, है ना। अभी समझो आप बोलेंगे कि वो मलबार हिल का बंगला मेरा यहीं प्रकट हो जाए तो मैं यहीं सो जाऊं, तो होता है कैसे, नहीं होता है। लेकिन भगवान की लीला में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कंसीवेबल, एनीथिंग इनकंसीवेबल, कोई सोच के अंदर आपके है या सोच के परे है, वो सारी चीजें हो सकती है। तब ये ऐसे प्रकार की इच्छा करना भी कोई दिमाग वाले आदमी की इच्छा है, भाई चलो त्रिवेणी संगम यही प्रकट हो जाए, सो नाइस टू, हिमालय यहां प्रकट हो जाए, हो गया, लंका प्रकट हो जाए, हो गया, सेतु बंद प्रकट हो जाए, समुद्र प्रकट हो जाए, रामेश्वर प्रकट हो जाए, क्या क्या जो जो इच्छा क्या सब प्रकट हो गए, ऐसा अद्भुत धाम है ये, कोई भी धाम ऐसा नहीं है जहां पर सब प्रकट हो गए अपनी इच्छा से। तो भगवान को लिए बहुत जिद किया ग्वाल वालों ने और ब्रजवासियों ने, तो भगवान ने सबके आंखों के सामने गंगा यमुना सरस्वती प्रकट कराई इस गांव में, ऊंचे गांव में, और सबके आंखों के सामने वो तीनों नदियां एकत्र हुई और एकत्र होकर कुएं में घुस गई, प्रवेश किया कुआं में, तो वो कुआं बना त्रिवेणी कूप, और सभी ब्रजवासियों ने भगवान के साथ में त्रिवेणी कूप में स्नान कराया, स्नान किया। स्वयं भगवान ने प्रयागराज तीर्थ यहां पर प्रकट किया है, वो कूप अभी भी है, कुआं जिसमें वो तीनों नदियां प्रवेशित हैं। और कहते हैं कि जिस दिन सोमवती अमावस्या होती है और शायद जिस दिन उधर शाही स्नान होता है तो इधर कुएं को फ्लड आता है, वो पानी से बाहर बहता है, तो उस दिन सारे ब्रजवासी आकर स्नान करते हैं। तो उस कुंभ में और इस कुंभ में क्या फर्क है, उस कुंभ में स्नान करने से त्रिवेणी के संगम में वो ऐसे मुहूर्त में शाही स्नान, मौनी अमावस्या, संक्रांति, बहुत सारे उसके चार पांच छह स्नान होते हैं, वो क्यों करते हैं लोग स्नान, ताकि वो उस दिन वो कहते हैं कि अमृत के बिंदु प्रकट होते हैं और अमृतत्व मोक्ष हमको भी प्राप्त होता है। लेकिन प्रेम विम का कोई जिक्र नहीं किया वहां पर, लेकिन यहां कर जो त्रिवेणी कूप में कुंभ मेले का समय हो या नहीं हो, साल के किसी भी दिन का समय हो, अगर आप वहां कर यहाँ कर जल का आचमन करेंगे, स्नान करेंगे, तो आपको सारे अमृत बिंदु तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कृष्ण की प्रेम भक्ति भी मिलेगी, राधा कृष्ण ललिता का आशीर्वाद भी मिलेगा, जो वहां पर के शास्त्र में नहीं लिखा है। इसलिए ब्रजवासी लोग बहुत होशियार होते हैं, वो कहीं जाते नहीं है, इधर ही रहते हैं, क्योंकि जो जो इच्छित वांछित है वो सब कुछ यहीं पर प्राप्त कराने की व्यवस्था प्रचुर मात्रा में भगवान ने कर दी है। तो बलराम जी का मंदिर हो गया, ललिता जी का मंदिर हो गया, त्रिवेणी कूप हो गया, उसके बाद में एक बहुत सुंदर स्थान आता है जो नारायण भट्ट गोस्वामी का समाधि स्थल है। नारायण भट्ट गोस्वामी आज के 400 साल पहले उनका जन्म हुआ उच्च ग्राम में, और वो नारद मुनि के अवतार थे, और कृष्ण भगवान के जाने के पश्चात कहते हैं कि 150-200 साल तक ब्रजवासियों ने कोई उत्सव ही नहीं मनाया कृष्ण भगवान के अंतर्धान होने के पश्चात, दुख में विरह में कुछ भी नहीं हुआ वहां पर, कुछ ही खुशी की बात नहीं हुई। तो कहते हैं कि नारायण भट्ट गोस्वामी का जन्म जो हुआ, तो नारायण भट्ट गोस्वामी ने यहाँ पर ब्रज लीलाओं को नाटिका के रूप में प्रस्तुत करने की जो रिवाज है, जो कस्टम है, वो यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया, उसको कहते हैं रासलीला। रास का मतलब ये नहीं कि केवल डांस ही होता है उसके अंदर, रासलीला मतलब कृष्ण की जो भी लीला होती है, वो जब आप स्टेज पर प्रकट करते हो तो उसको रासलीला कहते हैं। बहुत सारी मंडली है यहाँ पर, बहुत सारी मंडली है, कुशल कुशल मंडली है, जो बहुत ही सुंदर शास्त्रोक्त गीतों के साथ, आचार्यों के गीतों के साथ, शास्त्रों के श्लोकों के साथ में डायलॉग लिखते हैं, नृत्य बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीला, 8-8 घंटे की लीला होती है, शाम को सुबह शुरू होती है, रात को 2 बजे तक चलती है, और वो भी 15 दिन चलती है ऐसे, कभी कभी सुबह और शाम भी होती है, वृंदावन में होती है, से बहुत सारे सुंदर प्रसिद्ध पवित्र और बोनाफाइड ऐसे रासलीलाकार हैं जो अपने ट्रूप को लेके जाते हैं, उनको लोग बुलाते हैं और उत्सव के समय राधाष्टमी है, होली है, उस समय वो उनका रासलीला उत्सव चलते रहता है। वो जो कल्चर है भगवान की लीलाओं को नाटिका के रूप में प्रस्तुत करना, उसके सब कुछ करना जो जरूरी है, उसको वो कल्चर को इन्होंने ब्रज में प्रस्थापित किया। जैसे अभी सब गोपियां दुखी थी, बहुत परेशान थी, रो रही थे, उद्धव जी आए थे, तो कैसे शांत हुई वो? उन्होंने स्वयं भगवान के लीलाओं को केवल बताया नहीं लेकिन उन्होंने इनैक्ट भी करके दिखाया। और जब भगवान थे भी नहीं यहां पर, उद्धव जी भी नहीं आए थे, तभी वो बार बार जमुना किनारे यहां वहां जाकर वो लीलाओं को खुद करते थे। कोई कृष्ण बनता था, कोई राधा बनती थी, कभी राधा स्वयं राधा और बाकी कृष्ण बनके वो लीलाएं करते थे। वो अपने आप को सांत्वना देते थे उनको, उनकी लीलाओं में, नाटिकाओं में ऐसे प्रवेश करते हुए। तो ये कृष्ण की स्मृति को बनाए रखने के लिए, कृष्ण की स्मृति को निर्माण करने के लिए, कृष्ण की स्मृति का अभ्यास बनाए रखने के लिए ये लीलाओं को स्टेज पर प्रकट करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे मंदिर में भी वो ड्रामा फेस्टिवल होता है, नाट्य महोत्सव, ताकि हम सब लोगों को श्री कृष्ण की लीलाओं के अंदर प्रवेश करने का मौका मिले। हम केवल प्रेक्षक नहीं होते, जो प्रेक्षक होते हैं वो भी लीला में प्रवेशित होते हैं। जब मंदिर में आरती होती रहती है, आप खड़े हो तो आप भी श्रृंगार, आप भगवान की आरती कर रहे हो, भगवान के विग्रह सेवा में आप भी सम्मिलित हो केवल वहां खड़े रहने से। दर्शन को जाना भी विग्रह सेवा है, डीटी वर्शिप है। नाटिकाओं को देखना भी नाटिकाओं में भाग लेने जैसा है। इफ यू कॉन्ट टेक पार्ट, एटलीस्ट गो एंड सी, यू आर ऑलरेडी इन द लीला ऑफ द लॉर्ड। तो ये नारायण भट्ट गोस्वामी जो है, इन्होंने बहुत सारे विग्रह प्रकट किए हैं दुनिया में। अभी आप जो श्रीजी मंदिर जाते हो ना, तो लाडली लाल का वहां विग्रह है ना, राधा रानी और श्याम सुंदर जी। उसमें क्या विशेष देखते हैं आप? कुछ लगता है आपको कुछ अलग है यहाँ पर? ऐसा कुछ किसी को ध्यान में आया क्या? बताइए, रेडीमेड बताने से पूछकर बताना जरूरी है, अच्छा होता है। बताइए, एनीथिंग स्पेशल यू सॉ इन श्रीजी मंदिर? यहाँ पर राधा रानी तो चुनरी ओढ़कर सखी बन के खड़ी है और कृष्ण भगवान भी चुनरी ओढ़कर सखी बन के खड़े हैं। एक बड़ी चुनरी ऐसे आती है, दोनों को कवर करती है और बीच में एक छोटी राधा रानी को कवर करती है। तो श्याम सुंदर भी यहाँ पर हमेशा सखी बनकर रहते हैं, घर जमाई बनकर रहते हैं। तो वो जो विग्रह हैं वो किसने बनवाए थे बताइए? नहीं, वो बज्रनाभ ने बनाए थे, कृष्ण भगवान के प्रपौत्र, रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। वज्रनाभ को ब्रज का राजा बनाया गया। अब भगवान ने उनको आदेश दिया था कि मेरे सारी लीला स्थलियों को आप रेस्टोर करो, अच्छी तरह से बनाए रखो उनको। तो उन्होंने बहुत सारे विग्रह बनाए, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, और बहुत सारे विग्रह उन्होंने बनाए। उसमें उन्होंने लाडली लाल का विग्रह बनाया और नंदगांव के विग्रह भी बनाए। तो भगवान की इच्छा से उन्होंने उसको स्थापन किया, राधा रानी का धाम स्थापन किया, जहाँ पर घर था वहाँ पर मंदिर बन गया। लेकिन कुछ समय बाद श्री कृष्ण की इच्छा से वो सब लुप्त हो गया। तो नारायण भट्टी जी के स्वप्न में राधा रानी ने दर्शन दिया और कहा, मैं इस जगह पर भानुगढ़ पे मेरे विग्रह बंद पत्थर के अंदर है, मुझे निकालो वहां से और पुनः स्थापना करूं। नारायण भट्टी जी की कृपा से, स्वप्न के दृष्टांत की वजह से, राधा रानी और श्याम सुंदर के विग्रह जो है लाडली लाल के, वो जो आप चढ़ते हो ना मंदिर में, तो वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, उसके बाजू में एक छोटी जगह है, स्मॉल स्लिट इज देयर, वहाँ पर वो चरण चिन्ह है उनके, वहीं से वो प्रकट किए थे उन्होंने, नारायण भट्टी जी ने। ये उनका एक विशेष योगदान है। ललिता देवी के मंदिर में ललिता, राधा और कृष्ण का एक पूरा विग्रह था, शिला में बनाया हुआ गया था, वो शिला भी उन्होंने प्रकट कराई। आज आपके मंदिर में जाएंगे, ऊपर आप ये मंदिर में देखा होगा ना, बड़े विग्रह है राधा और ललिता और कृष्ण के, लेकिन उसके नीचे एक शिला रखी है काले रंग की, जिसमें छोटे छोटे विग्रह, वो शिला मूलभूत शिला है यहाँ की, जो नारायण भट्ट गोस्वामी ने प्रकट कराए। उसके बाद में वो जो बलराम जी का मंदिर है, जब हम जाएंगे वहां पर, उसके पीछे एक जगह है, उसमें अंदर हींस की झाड़ी है, विशेष प्रकार की एक झाड़ी है, एक सब बुश, यू नो, थिक बुश, उसके अंदर उन्होंने रेवती बलराम के विग्रह प्रकट किए थे। उनकी कृपा से वो प्रकट हुए और पुनर्स्थापना किए गए। इस तरह से नारायण भट्ट गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, ब्रज भक्ति विलास और करीब करीब 21 ग्रंथ लिखे उन्होंने। पूरे ब्रज के बीते हुए समाप्त हो गए ऐसे संस्कृति को उन्होंने पुनर्जागृत किया, री एस्टैब्लिश्ड होल ब्रज कल्चर, उसमें उनका बड़ा योगदान है। आज आप जो भी देखते हो ना, वो टिपिकल डांस करते हैं, होली का उत्सव है उसमें लट्ठा मार होली है, लड्डू मार होली है, और जो जो उत्सव यहाँ पर होते हैं, मटकी फोड़ लीला होती है, डोंगी लीला होती है, वो बुढ़ी लीला होती है, मटकी लीला होती है, आप बोलते जाओ, छद्म लीला होती है, जितनी भी सब कुछ आप देख रहे हो आज ब्रज में, बचा कुचा जो भी देख रहे हो, उसका सारा री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नारायण भट्ट गोस्वामी ने किया है। इसलिए हम नारायण भट्ट गोस्वामी के बहुत ऋणी है। ब्रज को ब्रज के रूप में अभी भी जो बनाए रखे गए हैं उसका बहुत सारा श्रेय जो है वो नारायण भट्ट गोस्वामी को जाता है। तो आप सब लोगों को बधाई हो, आप ललिता देवी के धाम में आए हो, दर्शन करो। यहाँ पर देह बिहारी जी का मंदिर है, देह कुंड के साथ में, और यहाँ पर शिव जी का मूर्ति है, क्या नाम था वो शंकर भगवान का, जय प्रभु, हाँ वेणी शंकर महादेव, गोपी शंकर महादेव भी है उसके अंदर है शायद। अच्छा, तो आप सब लोग दर्शन कीजिए यहाँ पर, और ये देह कुंड का आचमन कीजिए, और क्या प्रार्थना करेंगे आप देह कुंड के पास, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर जो अनर्थ है वो हम सब त्यागना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे चिपके हुए हैं, फेविक्विक से भी अधिक अच्छे मलम से चिपके हुए हैं। हाँ, उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र में हमें रुचि उत्पन्न हो जाए, क्योंकि वो साबुन की तरह है, किसी भी प्रकार का कितना भी गहरा ग्लू क्यों न हो, गोंद क्यों न हो, उसको वो निकाल सकता है। तो हरिनाम संकीर्तन चेतो दर्पण मार्जनम के रूप में हमारे ऊपर काम करे, हमारा दिल लगे उसमें, मन लगे, इच्छा से हम उसमें लगे रहे, हमारा स्वाद बने उसमें भगवान के नाम के जप में, और उस माध्यम से हम हमारा सारा षड विकार षड रिपु अनर्थ जो है वो सब त्यागने में समर्थ हो जाएं, क्योंकि वो त्यागने में, त्याग कर महान बनने की हमारी इच्छा नहीं है, वो त्यागने से कृष्ण और राधा के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, इसलिए हमको त्यागना। हमको कोई दुनिया में दिखाना नहीं कि ये साधु जो है ना वो सब इंद्रियों पर वश कर चुके हैं, वो हमको नहीं प्राप्त करना है, हमको वो इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की प्रीति को जगाना है, इसलिए हम वो जागना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।